یہ پروگرام امریکی عوام کی مدد اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تمام مواد کی ذمہ داری پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں شامل مواد یو ایس ایڈ یا امریکی عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہو۔
دیش کے گلستاں میں درد کی ہمیشہ ہے، دیش کے گلستاں میں درد کی ہمیشہ ہے۔
ریڈیو پروگرام روشنی ہمیں سے ہے کے ساتھ ببلی، چاچا جگمگ اور میں یعنی نورا بھی حاضر ہیں، اور تمام ننے منے روشن تاروں کو ہمارا پیار بھرا سلام پہنچے۔
نور، یہ روشن تارے کون ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں پایا میں۔
بھائی، پاکستان بھر کے بچے کیا روشن تارے نہیں ہیں؟ اور مجھے لگ رہا ہے کہ چاچا جگمگ کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔
نورا پی، میرا خیال ہے کہ آپ چاچا جگمگ کی بات نہیں سمجھی۔
وہ کیا؟
وہ یہ کہ چاچا جگمگ کی خواہش ہوتی ہے کہ سب تعریفی جملے انہی کے لیے کہے جائیں، اور یہاں بھی ان کو یہ خوش فہمی ہو رہی تھی کہ ہو نہ ہو روشنی کا تارہ یہی موصوف ہے۔
دیکھو ببلی، تم پاس آ جاؤ۔ اور ایسا بھی کیا ہے، میں بھی تو روشن روشن باتیں کرتا ہوں، پھر میں کیوں نہیں ہو سکتا روشنی کا تارہ؟
ارے بس بھائی، اب اور مزید تکرار نہیں، ٹھیک ہے؟ چاچا جگمگ بھی ہمارے لیے روشنی کا تارہ ہے، بلکہ روشنی کا استعارہ ہے۔
شکریہ شکریہ۔ ارے بھائی، یہ بات سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔
مگر یہ تو روشنی سے زیادتی ہوگی۔
ارے نہیں ببلی، ہر وہ شخص جو محبت اور خلوص کے ساتھ انسانیت کا درد رکھتا ہے اور پیارے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کام کرتا ہے، یقیناً وہ شخص روشنی کا استعارہ ہے۔
چلیں اب آئیں پروگرام کی طرف اور بتائیں کہ آج ہم کیا کیا سننے والے ہیں اپنے پروگرام میں، جس کا نام ہے روشنی ہم ہی سے ہے اور جس کا نعرہ ہے لیٹس ریڈ۔
لیٹس ریڈ۔
ارے ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پروگرام کے مستقل سلسلے آج بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے، جس میں خزانہ، بولتے کتاب اور ریڈیو رپورٹ شامل ہیں۔ اور ہاں، آج ہمارے پروگرام کا اسپیشل تھیم، یعنی جس عنوان کو مرکزیت حاصل رہے گی، وہ ہے ہم اور ہمارا ماحول۔
نورا پی، ماحول وہ لفظ ہے جو ہم روزانہ کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں چاہوں گی کہ آپ اس لفظ کے صحیح معنی ہم سب کو سمجھا دیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ماحول کسے کہتے ہیں۔
لو سنو بھائی، اس میں کیا مشکل ہے، ماحول ماحول ہوتا ہے اور کیا۔
ارے جی ہاں چاچا جگمگ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماحول ماحول ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ببلی کے سوال کا جواب ذرا تفصیل سے دے دیا جائے تو شاید آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔
ہاں ہاں، اجازت ہے، آپ کو بات کرنے کی آزادی حاصل ہے۔
شکریہ چاچا جگمگ۔
دیکھو ببلی، ماحول یا انوائرمنٹ کی تکنیکی حوالے سے جو تعریف کی جاتی ہے، اس سے ذرا ہٹ کے اگر ہم آسان لفظوں میں اس کی تعریف کریں تو ماحول ان تمام موجودہ مادی حالات کو کہتے ہیں جو کسی بھی وجود کو متاثر کر سکتے ہوں یا اثر انداز ہو سکتے ہوں۔
شکریہ پی، مگر کافی مشکل لفظوں میں بات کی ہے آپ نے، میں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکی۔
اچھا، آپ یوں کرتے ہیں کہ ہم مثالوں سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہاں نور، یہ اچھا رہے گا۔
دیکھیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ساتھی ہیں، یعنی ہوا، مٹی، پانی، پھول پودے، جنگل صحرا، دھوپ، سردی گرمی، یعنی وہ سب کچھ جو ہماری زمین پر اور اس کے گرد موجود ہے، ہمارے ماحول کا حصہ ہے۔
تو کیا وہ چیزیں بھی ہمارے ماحول کا حصہ ہیں جو نظر نہیں آتی؟
ہاں بالکل، جیسے ہوا ہمیں نظر نہیں آتی، مختلف جراثیم ہمیں نظر نہیں آتے، مگر وہ سب یقیناً ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر وہ چیز جو ہمیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہے یا ہم پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔
ये जो माहौल हम पर असर अंदाज होता है, तो क्या हम भी माहौल पर असर अंदाज होते हैं?
शाबाश बबली, आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया है।
इस सवाल में ऐसी भी क्या बात है जिसकी तारीफ की जाए?
चाचा जगमग, ये वाकई बड़ा अहम सवाल है।
भाई, वो कैसे?
वो यूँ कि हम सब की जिंदगी, हमारी सेहत, यहाँ तक कि हमारी बका हमारे माहौल से मुंसलिक है। जैसे हमारा माहौल हम पर असरअंदाज होता है, इसी तरह हम भी माहौल पर असरअंदाज हो रहे हैं।
लेकिन कैसे?
अरे देखे ना, ऑक्सीजन जिंदगी की बुनियादी जरूरत है और हमारा माहौल ही हमें ऑक्सीजन मुहैया करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिजा को आलूदा कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन में कमी वाकई होने का खदशा।
फिर मुश्किल बातें।
चलो हम एक आसान मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। ये बताओ कि फितरत हमें ताज़ा हवा और साफ सुथरा पानी मुहैया करती है, लेकिन हम घर भर का कचरा बाहर जगह जगह फेंक कर अपनी ताज़ा और साफ हवा के साथ साथ पानी भी गंदा कर रहे हैं या नहीं?
जी ये तो है।
तो सो साबित हुआ कि हम अपने माहौल पर असरअंदाज होते हैं। अगर हम अपने माहौल की हिफाजत करेंगे तो माहौल हमारी हिफाजत करेगा, और अगर हम अपने माहौल को नुकसान पहुंचाएंगे तो ठीक इसी तरह माहौल भी हमें नुकसान पहुंचाएगा।
अच्छा रूर, वो जो आपने नज़्म सुनवानी थी आज, वो कब सुनवाएंगी आप?
जी चाचा जगमग, मुझे बिल्कुल याद है, अभी वक्त हो रहा है नज़्म का, तो आइए सुनते हैं प्यारी सी नज़्म।
एक एक पेड़ से हाथ मिला के वादा करें ये सारे,
एक एक पेड़ से हाथ मिला के वादा करें ये सारे, इतने पेड़ उगाएंगे हम जितने वाले हैं, हमसे है हरियाली, हम धरती के रखवाले हैं, हमसे है हरियाली, अपनी जमीन है, अपना पलक है, अपने चांद सितारे,
एक एक पेड़ से हाथ मिला के वादा करें ये सारे।
करते हैं सोचो क्यों माहौल ये आलूदा हम लोग करें हैं सोचो हम से गिला करते हैं देखो चंदा मामू
वाह भाई वाह, बहुत अच्छी नज़्म थी। इसने तो एक समा बांध दिया है, वाह।
और इस नज़्म में बहुत अच्छा पैगाम भी तो था ना।
जी बबली, हमारा अगला सेगमेंट है खजाना, और इसमें आज हमारी मुलाकात अंग्रेजी हरूफ़े तहजी के तीसरे लफ्ज़ यानी सी से हो रही है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट खजाना की तरफ।
बीबी ने हमें मुख्तलिफ मुल्कों के नाम बताए जिनका नाम सी से बनता है, मुझे ये बहुत पसंद आए।
और मुझे तो सी की ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी।
तारीफ का शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि खजाना हमारे दूर दराज से सुनने वाले बच्चों को भी बहुत पसंद आया होगा। और बच्चों तैयार हो जाओ, अब आ रहा है आपका पसंदीदा सेगमेंट
यानी आज की कहानी।
बिल्कुल ठीक जज किया आपने बबली। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी।
अच्छे बच्चों, आज हम आपको एक फूल की कहानी सुनाएंगे। एक बहुत खूबसूरत फूल था जो कि एक बाग में खिला। उसका रंग सुर्ख था और उसकी पंखुड़ियां बहुत नरम नाजुक थी। ये फूल अभी खिलने के अमल में ही था, यानी अभी कली की शक्ल में था। तब से ही इसकी खुशबू पूरे बाग में फैलना शुरू हो गई थी। ये बहार की एक खूबसूरत सुबह थी जब वो कली से खिलकर फूल बना। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। खिलने के फौरन बाद फूल की जिससे मुलाकात हुई वो कुछ भंवरे और तितलियां थीं जो उसे मिलने आए थी। उसका पूरा दिन इन भंवरों और तितलियों की मेहमान नवाजी में गुजरा और शाम ढलते ही उसने देखा कि बहुत से लोग, औरतें और बच्चे बाग में घूमने आ गए। कुछ बच्चों ने बाग में आकर फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। बार बार उनका बॉल फूल की क्यारी से आकर टकराता जिससे फूल को बहुत खौफ महसूस हुआ। लेकिन कुछ बच्चे अपने वालदैन के साथ चहलकदमी करते हुए जब उसके पास से गुजरे तो उसे एक प्यार और खूबसूरती के एहसास के साथ देखते रहे। जब एक छोटे बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की तो उसकी मम्मा ने उसे रोकते हुए कहा कि फूलों को छूते नहीं, इस तरह वो जल्द मुरझा जाते हैं। ये सुनकर बच्चे ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके बाबा ने बात जारी रखी और बच्चे को समझाते हुए बोले कि ये फूल, तितलियां और सब्जा हमारे माहौल की खूबसूरती हैं और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। फूल मियां को बच्चे के बाबा की ये बातें बहुत पसंद आईं, लेकिन फिर वो बातें करते करते फूल की क्यारी से दूर निकल गए। फूल अपने ही ख्यालों में गुम था कि अचानक एक हादसा हुआ। एक बच्चा भागता हुआ आया और ठीक उसकी क्यारी में खिले उसके साथी फूल को गले से पकड़कर तोड़ लिया और अपने कोट के कॉलर में लगा लिया। फूल मियाँ के लिए ये मंजर बहुत तकलीफ दे था। वो सोच रहा था कि बच्चे ने उसके साथी फूल की जान क्यों ली, क्योंकि फूल तो अपनी क्यारी में ही अच्छे लगते हैं ना। अभी वो इस मंजर से संभल भी ना पाया था। उसने देखा कि एक फैमिली जो अपने साथ खाने का सामान लेकर आई थी उसकी क्यारी के पास आकर दस्तरखान बिछाने लगी। फूल मियाँ को ये अच्छा लगा कि इस तरह वो इस फैमिली के बच्चों को करीब से देख सकेगा और अगर मुमकिन हुआ तो उनसे दोस्ती करने की कोशिश भी करेगा। उसे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और वो उनसे दोस्ती करना चाहता था, और साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था कि जैसे एक बच्चे ने उसके साथी फूल को तोड़ डाला, कोई दूसरा बच्चा उसे भी ना तोड़ डाले, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था और वो जीना चाहता था। क्यारी के साथ आकर डेरा जमाने वाली फैमिली ने घर से लाए हुए खाने के बर्तन खोले और खाना शुरू हो गया। लेकिन ये क्या, इन लोगों ने खाना खाते हुए बची कुची हड्डियां और दूसरा कचरा फूल मियाँ की क्यारी में फेंकना शुरू कर दिया। फूल जब छुप कर अपने पाँव में फेंके गए कचरे को देख रहा था, तभी किसी बच्चे ने एक गंदा शॉपर उस पर उछाल दिया। शॉपर सीधा आकर फूल के ऊपर पड़ा था, जिससे वह पूरा का पूरा ढक गया। उसे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। अब तो उसके पास ताजा हवा भी नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और उसका दम घुट रहा था। फिर ऐसे ही बहुत देर बीत गई, फिर रात हो गई। वो बाग में घूमने वाले लोगों की आवाजें तो सुन रहा था, मगर वो किसी को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा जिस्म स्याह रंग के शॉपर से ढका हुआ था। रात भर इसी हालत में रहकर फूल मियाँ की हालत बहुत खराब थी। जब सुबह सुबह माली बाबा बाग में दाखिल हुए तो उसकी कुछ उम्मीद जागी कि शायद अब उसे इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। फिर जब माली बाबा की नजर फूल मियाँ पर पड़ी और जब उन्होंने क्यारी में पड़ा कचरा देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने जल्दी जल्दी उसके सर से गंदा शॉपर हटाया, क्यारी से कचरा साफ किया और फिर ताजा पानी की फुहार से फूल मियाँ और उसकी क्यारी में मौजूद दूसरे फूलों को नहलाया और एक बार फिर उसकी क्यारी खुशबू से महक उठी। ये सब करते हुए माली बाबा मुसलसल खुद से बातें करते रहे कि आखिर लोग सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखते। अगर लोग इसी तरह कचरा फैलाते रहेंगे तो सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, फूल कलियां बाग और पार्क उजड़ जाएंगे। हम सबको सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने जिस्म का, अपनी फैमिली का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने मुल्क का और फिर पूरी दुनिया का, क्योंकि पूरी दुनिया ही हमारा घर है। फूल मियाँ ठंडी हवा के झोंके से अटखिलियां करते हुए सोच रहे थे कि काश सब लोग माली बाबा की तरह सोचना शुरू कर दें तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए।
वाह, आज फूल मियाँ की कहानी बड़ी सबक आमोज थी।
वैसे फूल मियाँ के साथ ज्यादती हुई है,
लेकिन चाचा जगमग, हमारे मुआशरे में माली बाबा जैसे लोग भी तो हैं ना, जो फूल कलियों और फितरत के दोस्त हैं। बहरहाल कहानी बहुत अच्छी थी और अब हम देखते हैं कि आज की बोलती किताब क्या कहती है।
मैं हूँ बोलती किताब, मैं हूँ बोलती किताब, हूँ एक गोहरे नायाब, हूँ एक गोहरे नायाब, बांटू इल्म के खजाने, बांटू इल्म के खजाने, सिखाऊं अदब अदाब, सिखाऊं अदब अदाब, करूँ हर ज़हन को रोशन, करूँ हर ज़हन को रोशन, हर एक चेहरे को शादाब। हर एक चेहरे को शादाब। मैं हूँ बोलती किताब, मैं हूँ बोलती किताब।
पता नहीं आज बोलती किताब क्यों नहीं आई अभी तक।
अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? लगता है हमारा इंतजार हो रहा था।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं वाकई आपका इंतजार कर रही थी।
बहुत शुक्रिया आपके इंतजार का, और मेरा ख्याल है मैं टाइम से कुछ लेट भी नहीं हूँ।
हाँ ये तो है, पर आज आपने अपना तारुफ नहीं करवाया।
हाँ क्यों नहीं, अभी तारुफ कराए देती हूँ। आज मेरा नाम है सूंघना और चखना क्या है।
वाओ, टॉपिक तो अच्छा है, और क्या कुछ है आप में? मेरा मतलब है और क्या क्या मालूमात है आप में?
मैं 24 सफहात पर मुश्तमिल हूँ, और मुझ में तफसील से बताया गया है कि सूंघने से हमें इर्द गिर्द की चीजों का पता चलता है। हम अपनी नाक से सूंघते हैं, हम चीजों की बू से खतरे का पता चला सकते हैं। कई जानवर नाक से सूंघकर खुराक तलाश करते हैं। जानवर दोस्त और दुश्मन की बू पहचानते हैं। कीड़े फूलों पर क्यों बैठते हैं, और हम अपने घरों में खुशबू क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप बयक्त वक्त चीजों को सूंघ और चख सकते हैं। आप अपनी जुबान से चीजों को चखते हैं। बेहतर सूंघने और चखने वाले लोग।
अच्छा, तो ये वो मौजूदात हैं जिनके बारे में हम आपको पढ़ के जान सकते हैं।
जी हाँ, इन मौजूदात पर मुझ में काफी तफसील से लिखा गया है, और मुझे समझना भी आसान है।
और क्या आपको भी फेरोसंस वालों ने शाया किया है?
जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है।
और आपको खरीदने के लिए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए?
मैं 150 रुपए में बुक स्टोर्स पर दस्तयाब हूँ, और मैं अब बच्चों का इंतजार करूँगी कि आप मुझे खरीदें और पढ़ें, ताकि आप हर उस बात के बारे में जान सकें जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते।
प्यारी किताब अब बहुत अच्छी है।
तारीफ का शुक्रिया। और आप सब बच्चे भी तो रोशन तारे हैं ना, जिनसे मुझे प्यार है।
अच्छा प्यारी किताब, हमारी मुलाकात जल्द होगी।
जब तक के लिए खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मुझे उम्मीद है कि बोलती किताब ने आज जिस किताब का तारुफ करवाया है, तमाम सुनने वाले बच्चे इस किताब का मुतालिया करेंगे, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो।
नूर, आज से मैं भी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए काम करूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि माहौल तमाम इंसानियत का मुश्तरका सरमाया है, सो हम सबको मिलकर माहौल को तबाही से बचाना होगा।
चाचा जगमग, आज आपने भी मुझे अपना मदाह बना लिया है।
और आइए अब हम सुनते हैं आज की रेडियो रिपोर्ट।
फिजा में मौजूद मुख्तलिफ गैसों की ज्यादती की वजह से सूरज की किरणें जमीन से टकराने के बाद खला में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से फिजा और जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग या जमीनी तपश में इजाफा कहते हैं। इसकी वजूहात में ज्यादातर इंसान की अपनी पैदा करदा है। बिजली की पैदावार पूरा करने के लिए कारों और बसों में तेल का इस्तेमाल, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में पहुंचाते हैं। इसकी दूसरी वजह मैथेन गैस है, जो खेतों से पैदा होती है। तीसरी वजह फिजा में ज्यादातर आबी बुखारात का जाना है। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है। इस तरह नाकाबिले इस्तेमाल किरने खिला में नहीं जा सकती। चौथी, दरख्तों का काटना है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है।
मेरा नाम राबिया है। माहौल को आलूदा करने में सबसे ज्यादा गंदगी के ढेर का हाथ है। हम अपने घर का कूड़ा क्रिकेट गली मोहल्लों में फेंकते हैं, जिनमें प्लास्टिक के रैपर और शॉपर की वजह से माहौल आलूदा हो रहा है।
इन्वायरमेंटल एजेंसी का मौकफ कुछ यूँ है।
My name is Afsar Khan and I am working as a climate change expert and my designation is deputy director. जमीन से तकरीबन 630 किलोमीटर के फासले पे, या इससे कुछ आगे कह लें, एक लेयर है जो वो कॉस्मिक रेस को और सोलर फ्लेयर्स को डिफ्लेक्ट करता है। ये उसका काम है, और ये आयनोस्फीयर जो है ये रिलेटेड है हमारी जमीन की मैग्नेटिकियत के साथ, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब वहां से जो रेस बच गई आयनोस्फीयर से, वो आ जाती है ओजोन पे। ओजोन जो है हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है। अब अगर आयनोस्फीयर कमजोर हो जाता है, इसका मतलब है कि वो जो है शील्डिंग इफेक्ट छोड़ दिया, अब सारी की सारी रेज जो है इनके सोलर फ्लेयर जो है वो आ जाएंगे ओजोन पे। ओजोन में इतना हिम्मत फिर नहीं होगा कि वो 100% रेज को छान कर सके, फिल्टर कर सके। तो होगा यूं कि ये जो फोटॉन्स है या जो जिसको हम कॉस्मिक रेज कभी कभी कहते हैं या इसको हम सोलर फ्लेयर्स का नाम देते हैं, ये पूरी की पूरी जमीन पर आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज का फेनोमेना पैदा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएंगी। जाहिर बात है कि जब वहां से एनर्जी आ जाती है और ऊपर जो सिलसिला है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हो चुका है, जिसकी प्रॉपर्टी ये है ये जो रेज ऊपर जाती है इसमें जो एनर्जी है वो उसको ट्रैप करता है, यानी कि स्पेस में जाने के लिए उनको छोड़ता नहीं है, तो जमीन के ऊपर एक हवा सा बन जाता है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जाते हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं तो उससे ये होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिससे ओजोन लेयर बेहतर हो जाएगा और इससे जो ऊपर से जो कॉस्मिक रेज आती है उसकी फिल्ट्रेशन बेहतर हो जाएगी, तो एवरेज जो है वो हमारी जमीन की जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगी।
रफ्ता रफ्ता गर्मी के महीनों का इजाफा और सर्दी के मौसम की कमी जाने अनजाने में इंसानियत को खतरनाक हद तक जिंदगी और सेहत के नुकसान की तरफ ले जा रही है। साइमा यूसुफ, पेशावर।
आखिर में तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आरा और तजावीज के लिए हमें जरूर लिखें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। और बबली, आप बता दें ईमेल एड्रेस और उसके बाद बताऊंगी हमें मैसेज करने का तरीका।
और हमारा ईमेल एड्रेस है roshni@parkreading.org।
बिल्कुल, और आप हमें SMS कर सकते हैं 8333 पर, यानी 8333 पर।
अब नूर, बबली और चाचा जगमग को दीजिए इजाजत।
लेट्स रीड।
یہ پروگرام امریکی عوام کی مدد اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کے تمام مواد کی ذمہ داری پاکستان بریڈنگ پروجیکٹ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں شامل مواد USAID یا امریکی عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہو۔